हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अरहम और अरमान के जाने के बाद राजवीर को खुली छूट मिल गई थी और उसने जी भरकर मेहर के साथ मनमानी की थी। अरमान लोनावला पहुंच चुका था, इस बात से बेखबर कि कोई उस पर नज़र रखे हुए था। अनुराधा अपने एक मास्टर प्लान के साथ लोनावला पहुंच चुकी थी। जब से अरमान ने उसे किडनैप करके राजवीर को सौंपा था, तब से अनुराधा अरमान की फिराक में थी। ठाकुर मेंशन में वो अरमान पर हाथ नहीं डाल सकती थी, लेकिन अब तो अरमान अकेला आया था और ये मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। अनुराधा ने दूसरी ओर अपने फिरंगी दोस्त को शमशेर के पीछे लगा दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि जैसे ही वो लोनावला से वापस आए तब शमशेर सिंह उसे वहां मिले। उधर हॉस्पिटल में अबीर राठौड़ को अपने पास देखकर अक्रम चौंक गया। जब अबीर ने उससे जोया और रिया के बेहोश होने की वजह पूछी, वो चौंक गया और बोला, बाकी सबसे आपका क्या मतलब है? अक्रम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जोया और आपकी होने वाली बीवी रिया, उन दोनों को क्या हुआ था? वे क्यों बेहोश हो गई थीं? अक्रम को जोया का तो पता था, लेकिन रिया की बेहोशी का सुनकर वो चौंक गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? रिया को क्या हुआ है? और जोया, वो कहाँ है? वो कैसी है? और रिया कैसे बेहोश हो गई? अबीर समझ गया कि अक्रम को नहीं पता था कि उसकी बीवी भी बेहोश है। सो उसने कहा, आप फ़िक्र ना करें, टेंशन मत लें, जोया बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाएगा। और रिया के कुछ चेकअप चल रहे हैं, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी डॉक्टर उसके बारे में भी बता देंगे कि उसे क्या हुआ था। तब अक्रम उठने की कोशिश करने लगा और बोला, नहीं, मुझे उन दोनों को अपनी आंखों से देखना है। कहाँ हैं वे दोनों? प्लीज़ राठौर साहब, मुझे लेकर चलो उनके पास। अक्रम जी, अभी आप खुद काफ़ी वीक लग रहे हैं, आप अभी आराम कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी उन दोनों से मिलना है। जब तक मैं उन दोनों को अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, प्लीज़। अबीर अब अक्रम को नहीं रोक सकता था और उसने कहा, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अबीर ने अक्रम को सहारा देकर उठाया और उसे उसके कहने पर पहले जोया के पास ले जाने लगा। वहीं रोहित अबीर राठौड़ को अक्रम की मदद करता देख काफ़ी हैरान था। वो हैरानी से अबीर को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जिस इंसान ने आज तक लोगों को बिना एक पल भी सोचे मौत के घाट उतारा है, वो इंसान आज किसी को सहारा दे रहा है। रोहित सोच रहा था, सच में मोहब्बत बड़ी कमाल की चीज़ है जो किसी हार्टलेस बंदे को भी बदल कर रख सकती है। आज तक सिर्फ सुना था मोहब्बत में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन आज देख भी लिया, वाकई मोहब्बत में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अबीर अक्रम को जोया के पास ले गया और उसे उसके पास बिठा दिया। जोया को अभी होश नहीं आया था, लेकिन वो और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक थे। अक्रम को जोया को देखने के बाद तसल्ली हुई और वो अब रिया से मिलने को कहने लगा, चलिए मैं आपको रिया के पास लेकर चलता हूँ। नहीं अबीर साहब, आप यहीं रुकिए, जोया के पास मैं रिया के पास चला जाऊँगा। लेकिन मैं कैसे जाएंगे? आप रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, आप यहाँ रुकिए और प्लीज़ कुछ भी हो जाए उसे अकेला मत छोड़िएगा। अबीर ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने एक आदमी को भेजा, जाओ और उसे रिया के पास पहुँचा कर आओ। अक्रम अबीर के एक आदमी के साथ रिया के पास गया और उसे देखने लगा। वो अभी भी बेहोश थी। अक्रम सोचने लगा, रिया को क्या हुआ? वो क्यों बेहोश हो गई थी, जबकि वो तो बिल्कुल ठीक थी? जोया का बेहोश होना समझ में आता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है और मेरा बीपी लो हो गया था। लेकिन रिया को क्या हुआ था? वो क्यों अनकॉन्शियस हो गई थी? अक्रम अभी सोच ही रहा था कि तभी रिया का चेकअप करने के लिए डॉक्टर वहां आ गए और अक्रम को देखते ही उससे बोले, अक्रम साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप मेरी छोड़िए और ये बताइए, मेरी बीवी को क्या हुआ है? वो क्यों होश में नहीं आई है अभी तक? हमने आपकी वाइफ के सारे चेकअप कर लिए हैं, इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। ऐसा लगता है शायद ये किसी शॉक से बेहोश हुई हैं। कोई चीज़ थी जो इन्हें परेशान कर रही थी, जिसे शायद ये देखना या सुनना नहीं चाहती थी। इसी किसी न किसी चीज़ की वजह से शॉक लगा है, इसलिए ये बेहोश हो गई थी। लेकिन आप बिल्कुल भी फ़िक्र न करें, 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अक्रम ने राहत की सांस ली और वो सोचने लगा, शायद जोया और उसके एक साथ बेहोश हो जाने की वजह से ये परेशान हो गई होगी। इसी का इसको शौक लगा होगा, इसलिए ये बेहोश हो गई होगी। अकरम ने अपने हिसाब से अनुमान लगाया और रिया का हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया। उसने अबीर को जोया के साथ जानबूझकर छोड़ा था ताकि जोया और अबीर एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और जोया का दिल अबीर के लिए नर्म हो जाए। जोया को होश आने ही वाला था, तब उसके होश में आने से पहले अबीर राठौर ने बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का खाना वहां मंगवाया और सारा खाना अबीर के कहने पर जिस वार्ड में जोया थी उस वार्ड में लगवा दिया ताकि जोया होश में आते ही खाना खा सके, क्योंकि डॉक्टर ने अबीर को बताया था कि कुछ न खाने की वजह से मैडम बेहोश हो गई थीं। अरहम खाना लेकर आते हुए सभी गार्ड को एक टांग पर खड़े हुए देख रहा था और वो ये बात अच्छे से समझ चुका था कि ये जो कोई भी था, जोया उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। अरहम अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जबकि उसका मन काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था जोया को देखने के लिए, और उसने सोच लिया कि वो हर हाल में जोया से मिलकर रहेगा, और तभी उसे एक आइडिया आ चुका था। वहीं अबीर जोया को देख रहा था। जोया के कुछ बाल उसके माथे पर आ गए थे। अबीर हल्का सा झुका और उसने बड़े ही प्यार से उसके बालों को उसके कानों के पीछे कर दिया और कुछ देर वहीं बैठा हुआ उसे देखने लगा। एक बच्चों जैसी मासूमियत थी उसके चेहरे में। जोया बहुत प्यारी लग रही थी। अबीर मन ही मन यही सोच रहा था, काश ये पल यहीं ठहर जाएं और वो पूरी जिंदगी उसे ऐसा ही बैठा हुआ देखता रहे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी जोया को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो चुका था। अबीर उसे होश में आता देख उसे आवाज़ देने लगा, जोया जोया आप ठीक हैं, प्लीज़ उठने की कोशिश करें, जोया आप सुन पा रही हैं, जोया उठो। जोया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली थीं और अपने सामने अबीर राठौड़ को देखकर उसने अपनी आंखें एकदम से कस कर बंद कर लीं और बोली, ओ गॉड, ये अकड़ू मुझे अब सपने में भी दिखाई दे रहा है। अबीर उसका बड़बड़ाना सुन चुका था और वो मुस्कुराने लगा। तभी जोया ने एक बार फिर से हल्की हल्की अपनी आंखें खोली, तब फिर उसे अबीर राठौड़ सामने बैठा हुआ दिखाई दिया। जोया ने इस बार अपनी आंखें मली और फिर देखा, लेकिन सामने उसे अबीर राठौड़ ही दिखाई दिया। जोया को यकीन हो गया कि ये कोई ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है। जोया राठौड़ मेरे कमरे में? जोया एकदम से उठ बैठी और अबीर को देखती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अबीर ने बड़े ही प्यार से कहा, जोया आप अपने कमरे में नहीं हो, आप हॉस्पिटल में हो। क्या? जोया ने ये सुनते ही अपनी नज़रें उठाकर चारों ओर देखा और अपने आप को हॉस्पिटल में पाकर उसने अपनी आंखें बंद की और याद करने लगी कि हुआ क्या था। तब उसे याद आया वो रिया के पीछे भाग रही थी और उसके बाद उसका सिर अचानक भारी होने लगा था। लगता है जब मेरा सिर भारी हो रहा था तभी मैं बेहोश हो गई होंगी,
जोया ने अपने आप ही अनुमान लगाया और बोली, चलो मान लेते हैं मैं बेहोश हो गई थी, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया और अकरम भाई कहाँ हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम चलो और खाना खा लो। जोया हैरत से अबीर को देखती हुई बोली, खाना यहाँ? और आपको कैसे पता चला मैंने खाना नहीं खाया है? मुझे कैसे पता चला ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया था। क्या आपको ये नहीं पता है कि आप अकेली नहीं हो, आपके अंदर एक और जान पल रही है? अबीर की बात सुनकर जोया हैरान रह गई। सब पर हुक्म चलाने वाला, सबको डरा धमका कर रखने वाला इंसान आज किस तरह की बातें कर रहा था? जोया काफी हैरान थी। तभी अबीर ने कहा, अब बैठी हुई क्या सोच रही हो, चलो और खाना खाओ। जोया मुझे नहीं खाना है, कोई खाना, आप जाओ यहाँ से, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? आप जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हें खाना खिलाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, ओके? तुम उठो और खाना खाओ, आपको क्या लेना देना, मैं खाऊँ या ना खाऊँ, मैं मरूँ या जीऊँ, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अबीर जोया की बात सुनकर तड़प गया और उसके पास जा बैठा और उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहने लगा, श्श, कितनी बार कहा है मरने की बात मत किया करो, तुम मोहब्बत हो अबीर राठौड़ की, और अबीर राठौड़ की मोहब्बत मरने की बात करना शूट नहीं करती है। देखो तब जोया, देखो मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जोया की सांसें अबीर की सांसों से टकरा रही थीं। जोया को इतने करीब पाकर अबीर को खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था और जोया न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन अबीर को कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। सो वो अनायास ही जोया के और करीब आ गया, इतना करीब कि उन दोनों की नाकें आपस में टकराने लगीं, और अबीर को अचानक इतना करीब पाकर जोया ने भी बोलना बंद कर दिया और ऑटोमैटिक उसकी आंखें बंद हो गई थीं।